मैं जिस कवि को आमंत्रित कर रहा हूँ वो हिंदी कवि सम्मेलन के व्यंग धारा का इस समय का सबसे महत्वपूर्ण कवि है। सारी IITs में, सारे IIM में उसका जाना अपने आप में मार्के का काम होता है। मैं दिलावर फिगार साहब के चार मिसरे उसकी अगवानी में पढ़ रहा हूँ। अगरचे पूरा मुसलमान तो नहीं, लेकिन मैं तेरे दीन से नाता तो जोड़ सकता हूँ। नमाजो, रोजाओ, हज्जो, जक़ात कुछ भी नहीं, शबे बरात पटाखा तो फोड़ सकता हूँ। ऐसे व्यंगकार को बुला रहा हूँ। एक पंक्ति का व्यंग होता है, व्यंग एक पंक्ति का काम है। बस एक लाइन आप कहिए और काम पूरा हो जाता है। मैं गुलाबी नगरी जयपुर से व्यंग के हमारे दौर के सबसे बड़े कवि भाई संपत सरल को बुला रहा हूँ।
आप सब लोगों का अभिवादन। दरअसल खाली कुर्सियों के बावजूद लोग बैठ नहीं रहे हैं। हिंदुस्तानी आदमी ऐसी किसी चीज़ पर बैठना ही नहीं चाहता जिस पर लेट नहीं सकता। कला की, आर्ट की, कल्चर की स्थिति इन दिनों बड़ी खराब है। बिरजू महाराज तक च्यवनप्राश बेच रहे हैं। देश परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। मनमोहन सिंह जी बोलते नहीं थे, मोदी जी सुनते नहीं है। बोलने का ऐसा कोई माध्यम नहीं है जिसको वो छोड़ना चाहते। अभी पिछले दिनों तो रेडियो पे बोले तो ओबामा ने बधाई दी कि मोदी जी आज तो आपको रेडियो पे देखा। वो कहना तो ये चाहते हैं कि मैं तो नेहरू के बाद प्राइम मिनिस्टर बनता, लेकिन दिक्कत ये थी फिर चाय कौन बेचता। मेरा सीना 56 इंच का है। मैंने कहा भैया शादी करके पत्नी को भूलने की सुविधा होती तो हमारा भी इतना ही होता। देश उपलब्धियों के दौर से गुजर रहा है। अभी हमने मंगलयान छोड़ा, वो छोड़ा जो भी कुछ हुआ वो अपनी जगह है। प्रचार ये किया जा रहा है कि हमने छोड़ा और वो पहली बार में पहुंच गया। मैं तो खुद मंगलयान को बधाई देना चाहता हूँ कि उपग्रह भारतीय होने के बावजूद वहीं पहुंचा जहाँ के लिए भेजा गया था। और मोदी जी भी बधाई के पात्र हैं कि योजना मनमोहन सिंह जी की थी, बदले की भावना से काम नहीं लिया, वरना आधे रास्ते से वापस बुला सकते थे। वो एक सज्जन माइल स्टोन को देवता समझकर नारियल फोड़ रहे थे। किसी समझदार ने टोक दिया, साहब आप जिसको देवता समझ रहे हो वो माइल स्टोन है। वो अड़ गए, अपनी पे आए हुए थे, बोले ये साक्षात देवता है। देख इसने यहीं से बता दिया कि दिल्ली 250 किलोमीटर है। दस साल तक देश साइलेंट मोड पे रहा। मनमोहन सिंह जी ने न बोलने की परंपरा अंत तक निभाई। मोदी जी को जीत की बधाई भी मिस कॉल से दी, लगाई नहीं जैसे देश में प्रधानमंत्री है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सोनिया जी ने उनको प्रधानमंत्री बना तो दिया और बताया नहीं हो। जब चुनाव के परिणाम आ गए तो मनमोहन सिंह जी 10 जनपद गए खड़ाऊ जमा कराने। वहां राहुल जी टेलीविजन पे क्रिकेट की कमेंट्री देख रहे थे, क्रिकेट का लाइव मैच चल रहा था। मनमोहन सिंह जी भी बैठ गए, जानते नहीं थे क्रिकेट के बारे में, लेकिन ऐसा एहसास नहीं कराया। अच्छा, मन का चैनल भी नहीं बदल सकते क्योंकि रिमोट सोनिया जी के पास था। अच्छा, राहुल जी ने देखा कि भाई अपडेट और स्कोर बताने वाला तो आ ही गया, अब मैं क्यों देखूं, वो सो गए। आधे घंटे बाद आंख खुली, देश कैसे चला 10 साल तक। आधे घंटे बाद आंख खुली तो राहुल जी ने पूछ लिया, मनमोहन सिंह जी गोल हो गया क्या? और पूरा सभागार तालियों से बताएगा अगर मेरे व्यंग तक आप पहुंच जाए। बोले मनमोहन सिंह जी गोल हो गया क्या? मनमोहन सिंह जी बोले, राहुल जी आप भी कैसी मजाक कर रहे हो, गोल तो क्रिकेट में होता है। मेरे एक मित्र ने प्रेम विवाह किया, प्यार के दौरान जिस लड़की के साथ जो कंकर झील में फेंके थे, शादी के बाद दाल में निकल रहे। और ताली तो आप इस बात पर बजाएंगे, जिस लड़की को लेकर भागा था अब उसको देखते ही भागता है। शादी के 3 दिन बाद मिला, मैंने कहा नया नया प्रेम विवाह किया है, पत्नी को लेकर सिनेमा जा, सैर सपाटा करके मंदिर मंदिर भटकता है। बोले सुना यार, जोड़े ईश्वर बनाता है, बस उसी को ढूंढना है। और मेरे मित्र का त्याग तो प्रेम के मामले में महात्मा बुद्ध से भी बड़ा है। बुद्ध अपनी पत्नी और बेटे को सोता हुआ छोड़कर चले गए थे। वो रोज रात को इंतजार करता है कि लुगाई सोए तो घर में घुसूं। मैं हिंदी का विद्यार्थी था, मुझसे कौन प्रेम करती भाई, मरते हुए पे कौन मरेगा। दो तीन लोग ताली बजा रहे हैं, आप भी रहने दो।
बहुत अच्छे।
लेकिन मेरे साथ दो चीजें ठीक थे, तो साहित्य का विद्यार्थी था तो भाषा अच्छी थी, दूसरा मैंने ट्रकों से शेरो शायरी उतार रखी।
ट्रकों से
तो प्रेम करने वाले मुझसे प्रेम पत्र लिखवाते थे, और मैं जिसके प्रेम पत्र लिख देता था उसके दो नतीजे जरूर निकलते थे, या तो उसकी शादी हो जाती थी या फिर वो पिटता था। हालांकि बात एक ही है।
अच्छा है, वाह।
ये प्रेम है क्या? कबीर को, सूर को, तुलसी को, मीरा को पढ़ो, गालिब, दाग और मीर को पढ़ो, मुनव्वर राणा जी, राहत इंदौरी जी और कुमार विश्वास को पढ़ो, तो पता लगे प्रेम दर्शन का विषय, प्रदर्शन का विषय नहीं। एक तो साहब चुनाव में मीडिया ने बड़ी कलाकारी करी। ये जो मीडिया है, चाहे प्रिंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, दिखता दिए के साथ है लेकिन है हवा के साथ। चैनलों पर आधे समय तो नेता आते रहते हैं, आधे समय सांप, बिच्छू, भूत, प्रेत, और हम लोग भी बड़े मन से देखते हैं कि चलो नेताओं से तो ठीक है। विजन के नाम पे टेलीविजन रह गया, और न्यूज चैनल आप देखो उन पर जो बहस आती है लगता है जैसे अवध के नवाब मुर्गे लड़ा रहे हो।
अच्छा है।
चार जने होते हैं बहस में, एक मुद्दे का समर्थक, एक मुद्दे का विरोधी, एक बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला, और तीसरा एंकर तीनों को भड़काने वाला। और व्यंग पर तालियों से बता ना मुझे, तीनों को भड़काने वाला एंकर, बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर और करते रहते हैं रेखा की गरीबी पर।
अच्छा है, बहुत अच्छा है।
ये टीवी चैनल वाले तो गरीबी के दृश्य भी तब तक नहीं दिखाते हैं जब तक कोई स्पॉन्सर नहीं मिल जाए। पिछले 12-15 साल में इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जो सबसे बड़ा अपराध किया हुआ है, देश में जूते बनाने वाले भूखे मर रहे हैं और जूते खाने वाले सेलिब्रिटी हो गए। कुछ नया छप रहा। एक दिन तो अखबार के दफ्तर से दो लोग आगे, बोले संपत सरल जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, आप भी ग्राहक बन जाओ, क्योंकि अखबारों का कोई पाठक तो बनता नहीं, ग्राहक ही बनता
है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे।
एक रुपए में 16 पेज, और मेरा जवाब सुनना, आनंद लेना, आप भी ग्राहक बन जाओ एक रुपए में 16 पेज। मैंने कहा भैया रुपया तो चाहे एक की जगह दो ले जाए, लेकिन 16 पेज खाली दे जाए कर। फिर मैंने रिसर्च की, ऐसे इतने अखबार अगर कोई खरीदता नहीं तो बिकते कैसे। तो अचानक एक दिन एक अखबार के दफ्तर से फोन आया, बोले संपत सरल जी आज आपका नाम हमारे अखबार में छपा। मैं बड़ा खुश हुआ, जी आपका अखबार कहाँ मिलता है? वो बोले हमारा अखबार कोई ओकर नहीं बांटता, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद खरीद कर बांटता है। कहते हैं कि देश ने बड़ी तरक्की की, हम भी मानते हैं, लेकिन एक्सप्रेस हाईवे से 10 किलोमीटर नीचे उतरो हिंदुस्तान आज भी वही है। ₹15 में पानी की बोतल मिलती है तो तरक्की नहीं है? प्रजातंत्र के गाल पर तमाचा है कि सरकार 66 साल में देश की जनता को शुद्ध पानी नहीं पिला पाई।
बहुत अच्छे, क्या बात है संपत जी, वाह।
इन अंग्रेजों का सूरज नहीं डूबता था, उनके वायसराय और राजाओं की यूनिफॉर्म बैंडबाजी वाले पहनते। अभी तो मोदी जी कई देशों की यात्राएं करके आ रहे हैं, सबको आमंत्रित कर रहे हैं कि साहब हमारे यहाँ आ जाओ। लोग आने को भी तैयार है लेकिन गांधी की लाठी का डर लगता है। तो फिर मोदी जी ने तरकीब निकाली, बोले भैया कल गांधी जयंती आ रही है, गांधी की लाठी को झाड़ू से बांध दो। विदेशी जितने पूंजी निवेश है वो सब जानते हैं कि शरद जोशी ने भी एक अच्छी पंक्ति कही है, हम भारतीयों को वह व्यक्ति उधार दे जिसका पुनर्जन्म में विश्वास हो। पैसा दुनिया में बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। जब राम पास में थे तो सीता को सोने का हिरण चाहिए था, और वही सीता जब सोने की लंका में बैठी थी तो हाय राम
वाह वाह। क्या बात है।
मैं गद्य पढ़ता हूँ, जैसा शरद जोशी जी केपी सक्सेना जी पढ़ते थे। वो दोनों इस दुनिया में है नहीं। 5-6 साल से मैंने कोशिश की और भाई कुमार विश्वास का बड़ा संबल मिला, काम चल निकला। कहाँ तक पहुँचा आप देखें। हम तकनीक के युग में जी रहे हैं। गांधी जी कहते थे टेक्नोलॉजी साधन है, साध्य नहीं है। तकनीक का सबसे बड़ा नुकसान क्या है, वो तेजी से जमाना बदल रहा है। पिताजी के अनुभव बेटे के किसी काम के नहीं रहे। तकनीक का सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि आदमी की समझ बढ़ी लेकिन सहनशीलता कम हो गई। भौगोलिक दूरियां कम हुई लेकिन आदमी से आदमी दूर हो गया।
वाह,
मैंने एक रचना लिखी, पहले का जो समय था उसमें आपाधापी संघर्ष और सब कुछ था लेकिन रोमांच बहुत था। आज जीवन में जितनी आपाधापी संघर्ष है लेकिन रोमांच नहीं है, रस नहीं छूट गया। आज आपको मर्सिडीज या ऑडी में वो आनंद नहीं आता जो पिताजी की दी हुई उस जमाने की 150-200 रुपए की साइकिल में आता। तब मैं कहना चाहता हूं, पहली पंक्ति से आप पकड़ लेंगे आपको अच्छा लगेगा, वे भी क्या दिन थे। आदरणीय मुनव्वर राणा साहब को समर्पित है, सुने साहब, वे भी क्या दिन थे। पहली पंक्ति से आप पकड़ें अच्छा लगेगा। वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एकाध के पास होती थी और समय सबके पास था।
वाह, बहुत अच्छे संपल भाई, वाह वाह वाह, क्या बात है। ये है व्यंग, वाह 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 वाह।
और अगली पंक्ति पर तो पूरा सभागार मुझे आशीर्वाद देगा। दुबई में बहुत आया, आपके यहाँ पहली बार आना हुआ। वे भी क्या दिन थे, मैंने एक पंक्ति में अगर टेक्नोलॉजी को आईना दिखाया हो तो मेरा समर्थन करना। वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एकाध के पास होती थी और समय सबके पास था। आज की तरह नहीं था कि फेसबुक पर 5,000 दोस्त हैं और परिवार में बोलचाल बंद है।
वाह वाह संपत जी वाह।
ये जितने लोग बैठे हैं कवि सम्मेलन मुशायरा, वो मजाक की बात भले 10 तरह की होती होंगी लेकिन कोई धंधा नहीं, हमारे लिए मिशन है। हमारी कोशिश है मोबाइल इंटरनेट कंप्यूटर टेलीविजन में उलझी पीढ़ी शब्दों से मोहब्बत करे, किताबों की तरफ लौटे, बुजुर्गों का सानिध्य हासिल करे। दोस्तों एक निवेदन कर दूं, दुनिया की कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, उजाला बनाया जा सकता है, धूप नहीं बनाई जा सकती।
वाह,
आज की शाम जिन महनीय लोगों को आपने आमंत्रित किया है वो सब धूप बनाने वाले लोग हैं, इनके साथ समय गुजारिए। आज की तरह नहीं था कि फेसबुक पर 5,000 दोस्त और परिवार में बोलचाल बंद हैं। पुराने समय की जो विरोधाभास थी, विसंगतियां थी, उनका आनंद लें। तब मोबाइल तो क्या लैंडलाइन फोन तक नहीं होता था, अतः झूठ सिर्फ आमने सामने मिलने पर ही बोला जाता था। खान पान शुद्ध था और याददाश्त अच्छी थी, हर व्यक्ति को साथ साथ पीढ़ियां याद रहती थी, अपनी भी और गाली गलौच होने पर दूसरों की भी। हमारी प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी थी जिसमें शिक्षा प्राथमिक नहीं थी। छोटे छोटे गांवों से आप लोग पढ़े कहां, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज थोड़ी गए थे, लेकिन जीवन का अनुभव था। और अब तो डिग्री से बड़ा अनुभव होता है, ये हम सब लोग जानते हैं। बाकी राजनीति से सीखना चाहिए कि पढ़ लिख कर नवरत्न होने से अच्छा अनपढ़ रह करके अकबर बनो। हमारी प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी थी जिसमें शिक्षा प्राथमिक नहीं थी। हमारा 50 बच्चों, 3 अध्यापकों, 2 पेड़ों और 1 कमरे का स्कूल हुआ करता था। आज तो इतने के बल पर लोग यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। पढ़ाई लिखाई को लेकर कतई तनाव नहीं रहता था क्योंकि हम विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच एक समझौता था कि सप्ताह में 3 दिन वे स्कूल नहीं आएंगे और 3 दिन हम। बच्चों को कितना तनाव देते हैं भाई, किस बात का तनाव है। हम कवि लोग कभी हमारे बच्चों को तनाव नहीं देते, जब तक पास होते रहेंगे पढ़ने जाते रहेंगे, जिस दिन फेल हो जाएंगे खुद स्कूल खोल लेंगे।
येल यूनिवर्सिटी।
बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था, लोक भाषा, मातृभाषा, जो हमने माँ से दादी से सीखी। अब तो हिंदी बोलने में भी शर्म आती है, उर्दू बोलने में शर्म आती है। बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था, हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी और इतने देर गए रात को इस व्यंग को हिंदुस्तानी आदमी से अच्छा कोई समझ नहीं सकता। व्यंग सुने, हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी और अंग्रेजी तो पीने के बाद ही बोली जाती थी। कई प्रकार के खेल कूद थे, अब तो बच्चे गेम के नाम पर वीडियो गेम खेलते हैं। बच्चे भी क्या करें, खो खो कुश्ती और कबड्डी तो संसद विधानसभाओं में चले गए। बाकी खेलों को क्रिकेट ने बाउंड्री लाइन से बाहर कर रखा है। जो चैनल खोलो क्रिकेट, एक दिन तो कमेंटेटर ने बड़ी ऊंची छोड़ी, बोले जब से वो धवन और कोहली ने मूछें रखी हैं तब से धुआंधार परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे उस दिन समझ में आई कि दुनिया में महिला क्रिकेट क्यों पिछड़ा हुआ है। हालांकि क्रिकेट तब भी खेला जाता था, बैट का मालिक बैटिंग करता था और बॉल का मालिक बॉलिंग। फील्डर भी यही दो होते थे। बैट टच न होने पर फेंकी हुई गेंद फेंकने वाले को ही लानी पड़ती थी। एक ओवर कुल कितनी गेंदों का होगा यह गेंद का मालिक तय करता था। बल्लेबाज पहले गेंद पीटता था, फिर मूड के अनुसार भागकर या चलकर रन बनाता था, तत्पश्चात गेंद लाता था। और अब आपकी तालियां उठेंगी। ऐसा भी होता रहता था कि बल्लेबाज की दिन भर गेंद लाने की इच्छा नहीं रहती थी और वह दिन भर रन ही बनाता रहता था। हम आवारा पूंजीवाद के दौर में जी रहे हैं।
आय हाय आवारा पूंजीवाद, वाह।
पूंजीवाद नहीं, आवारा पूंजीवाद के दौर में जी रहे हैं, जिसका काम है मनुष्य के भीतर असुरक्षा बोध भरना। लाखों करोड़ों रुपया जमा है, उसके बावजूद चिंता रहती है कल क्या खाएंगे।
आए हाय हाय हाय, वाह 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 वाह।
वार्डरोब अलमारी कपड़ों की भरी है और मनुष्य तय नहीं कर पाता कि पहनना क्या है। ये आवारा पूंजीवाद बुजुर्ग लोगों के समर्पित करता हूं एक पंक्ति। लोग भूखे उठते तो थे किंतु भूखे सोते नहीं थे।
आए हाय, वाह 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 वाह।
महंगाई बिल्कुल नहीं थी, ईमान के अलावा सब कुछ सस्ता था। सस्ताई का अंदाजा आप इसी से लगा लें कि फिल्मों में हीरोइनों को पैसा कम मिलता था तो भी कपड़े पूरे पहनती थी।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
उन दिनों रामलीलाएं मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करती थी। हर धर्म जाति भाषा के लोग देखते थे रामलीलाएं, और अवध वाले तो खैर धन्य इस मामले में। उन दिनों रामलीलाएं मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करती थी, जिनमें महिला पात्रों का रोल भी पुरुष ही करते थे। रामलीला वालों का गले मिलने और गले पड़ने का समय अलग अलग होता था। रामलीला मंडली गांव की धर्मशाला में ठहरती थी। हम बच्चे दिन में धर्मशाला में जाकर देखते थे कि गत रात ही एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे, बाली और सुग्रीव साथ साथ ताश पत्ती खेल रहे। सूरपन खां मंथरा के लिए चाय बना रहा है, और हर पुरुष की जो घर में औकात है, चाहे मैं ही हूं चाहे कुमार विश्वास हूं, चटाई पर बैठा रावण रात को आरती में आए पैसों का हिसाब मंदोदरी को दे रहा है। मैं तो जयपुर से कल शाम को आया, दुबई एयरपोर्ट पे उतरा, कई परिचित मिल गए, बोले संपत सरल जी आपको यूट्यूब पे सुनते हैं, फेसबुक पर पढ़ते रहते हैं, वैसे आप कहाँ के हो? मैंने कहा भैया शादी को 23 साल हो गए, कहीं के नहीं। लोग पैदल चलते थे और पदयात्राएं करते थे, जो कि पद प्राप्त करने के लिए नहीं होती थी।
बहुत अच्छा है।
कुछ एक के पास साइकिलें होती थी जो 4 रोटियों में 40 का एवरेज देती थी।
आए हाय, वाह वाह वाह।
कारें मोटरसाइकिलें तो छोड़ो, बसें तक गिनती की हुआ करती थी। जहाज और हवाई जहाज तो हम किताबों में देखते थे और कॉपियों के बनाते थे।
बात है संपत भाई, वाह वाह।
याद आती हैं वे मीटर गेज की कोयले के इंजन वाली गाड़ियां। तय करना कठिन था कि ट्रेन और यात्रियों में कौन किसको ढो रहा है। उनकी स्पीड का तो ये हाल था कि घंटे आध घंटे का सफर होता था तो भी लोग 3 वक्त का खाना बांध कर चलते थे। ट्रेन में चढ़ने में जितना पसीना आता था उतरने में उससे अधिक आता था। यात्री काठ की सीटों पर काठ के उल्लू बने बैठे रहते थे। डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था, और आदमी का मनोविज्ञान आप पकड़ ले, मुझे आशीर्वाद दें। डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था, खड़े यात्री भजन पसंद करते थे और जिन्हें सीट मिल जाती थी वे गजल।
बच्चे वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे।
लोग फरमाइशें करते रहते थे और डफली वाले गाते रहते थे। डफली वालों को पैसे देने का वक्त आता था तब फरमाइशें करने वाले खुद गाने लगते थे। फिर एक आम हिंदुस्तानी का मनोविज्ञान आप देख लें, क्योंकि यात्री को सामान की भी स्वयं ही रक्षा करनी होती थी, अतः खाली हाथ चढ़ते थे तो भी सामान लेकर ही उतरते थे। ताली तो जोर से बजा दो। चिट्ठी पत्री का दौर था, एसएमएस ईमेल वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद। और हमारे एक बड़े शायर हैं उदय प्रताप सिंह जी, जो सांसद भी रहे, समाजवादी पार्टी के नेता, उनका एक शेर है कि मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल कर। चिट्ठी पत्री का दौर था, एसएमएस ईमेल वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद। पत्रों में व्याकरण अशुद्ध होते हुए भी आचरण शुद्ध होता था।
वाह,
मैंने तो स्वयं कई बार अपने पिताजी को चरण स्पर्श की जगह आशीर्वाद लिखा है। समापन की ओर बढ़ता हूँ। खत लिखता हूँ खून से स्याही न समझना, अर्थात प्रेम पत्र लाल स्याही से लिखकर अपने खून से लिखा बताने का रिवाज तब भी था। परिणाम भी वैसा ही निकलता था। जिन्होंने वैसे प्रेम पत्र लिख लिख कर कबूतर उड़ाए थे, आज बेचारे शादी शुदा हैं और तोते उड़े हुए। शादी से याद आया, तब शादियों में व्यर्थ का धूम धड़ाका और दिखावा नहीं होता था। बस दो चार बाराती बैंड पर बजती नागिन की धुन पर सपेरा नृत्य कर लेते थे।
बहुत अच्छा।
क्योंकि तब बीन बनाने के लिए रूमाल ही दो चार बारातियों के पास होते थे। और इस लेख का सबसे मार्मिक जो बंद है वो मैं आदरणीय राजेश रेड्डी जी को समर्पित करता हूँ। वो आकाशवाणी से जुड़े हैं। वह टीवी नहीं, रेडियो का युग था। टेलीविजन ने एक बड़ा नुकसान ये और किया कि जो सुनने वाली कलाएं थी उनको देखने वाली कलाएं बना दिया। वह टीवी नहीं, रेडियो का युग था। व्यक्ति बंदूक भले ही बिना लाइसेंस के रख सकता था, किंतु रेडियो के लिए लाइसेंस अनिवार्य था। याद आते हैं अमीन सयानी का बिना का गीत माला,
वाह,
जसदेव सिंह की हिंदी कमेंट्री, कृष्ण कुमार भार्गव, देव के नंदन पांडे और रामानंद प्रसाद सिंह के समाचार। और अब आपकी समूह में तालियां उठेंगी, गर्दन झुकाकर बीबीसी तो ऐसे सुनते थे जैसे आज बीबीसी सुनते।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद।
याद आते हैं अमीन सयानी का बिना का गीतमाला, जसदेव सिंह की हिंदी कमेंट्री, कृष्ण कुमार भार्गव, देवकी नंदन पांडे और रामानंद प्रसाद सिंह के समाचार, गर्दन झुकाकर बीबीसी तो ऐसे सुनते थे जैसे आज बीबीसी सुनते हैं। बड़ा मन से आपने सुना। अब मैं इस लेख का समापन करता हूँ। समापन पर भरपूर तालियां बजा देना, वरना इसको फिर शुरू कर सकता हूँ। सच है, भरपूर तालियों से विदा करना। सच है, गन्ने का रस सूख जाए तो वह लाठी रह जाता है। तब हमारा जीवन कछुए की तरह था, आज हम खरगोश की तरह दौड़ रहे हैं, अर्थात भाग सब रहे हैं और पहुंच कोई नहीं रहा।
आए हाय, आए हाय, वाह 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 वाह।